भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदा धिया उलुखलात् धावमानं परामृष्टं अत्यन्ततो धृत्या गोप्या नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामि ईश्वरं यशोदाभियोनु खला धावमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोनुखलाधावमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या जो रो रहे हैं सत्यव्रत मुनि ने इसका इसकी रचना की है। पद्म पुराण में एक संवाद है, नारद जी वक्ता हैं और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, तो नारद जी ने यह इतिहास कहा है कार्तिक महात्म्य में। पद्म पुराण में एक खंड है कार्तिक महात्म्य, तो उसमें सत्यव्रत मुनि किस प्रकार भगवान के दामोदर स्वरूप की उपासना करते हैं और क्या स्तोत्र पढ़ते हैं इसको दिया गया है। यह स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है और सारे विश्व में कार्तिक के महीने में यह स्तोत्र गाया जाता है। विशेष करके इस स्तोत्र में भगवान जो उखल में बांधे गए हैं इसी दृश्य का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। नमामि ईश्वरम कथम भूतम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जिनका रूप जिनका सर्विग्रह सच्चित आनंदमय है, कोई सामान्य बालक नहीं है। पुनः कथम भूतम ईश्वरम, लसत कुंडलम, जो कुंडल के कारण बहुत सुंदर लग रहे हैं अथवा जिनके कानों में कुंडल बहुत अच्छा लग रहा है, लसत कुंडला, कहाँ है आपके ईश्वर? गोकुले, गोकुल में, गोकुले ब्राजमानम। ब्राजमानम का अर्थ बहुत सुंदर लगते हैं, भले मीठी लगी हो शरीर में और मुख में माखन लगा हो, बहुत चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लगे। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और भ्राज का अर्थ होता है प्रकाशमान। भ्राजमान बहुत सुंदर लग रहे हैं, सूर्य की तरह तेज नहीं, सौंदर्य की किरणें निकल रही है। इसका अर्थ यह सूर्य से तेज निकलता है, ऐसे भगवान कृष्ण से सौंदर्य निकलता है। ब्राजमान गोकुल यशोदा धिया, जो ईश्वर जो भगवान यशोदा के भय से, यशोदा धिया कहते यशोदाया धिया भय न, यशोदा के भय से उलू खलात उखल से कूद पड़े और धाव मान, उलू खलात धाव मान, उखल से कूद करके जो भाग रहे थे गोकुल की गलियों में इधर उधर, परंतु बहुत जोर लगा करके भाग रहे थे ईश्वर पर, गोपी के द्वारा अंत में तेज गति से चल करके पकड़ लिए गए। मतलब वो जितना स्पीड से भाग रहे थे गोपी यशोदा उससे ज्यादा स्पीड से भागे, इसलिए द्रुत्य शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान जितना स्पीड से भाग रहे थे यशोदा का स्पीड ज्यादा था। अंततः सब समय नहीं, शुरू में तो ऐसा लगा कि अब थक जाएगी, गिर जाएगी, पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन अंततः अत्यंततः अति अंततः बिल्कुल लास्ट में परामृष्ट, मृष्ट का अर्थ का स्पर्श, परामृष्ट का अर्थ है पकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए, अंततः पकड़ लिए गए। किसके द्वारा? गोप्या, गोपी के द्वारा। यदि संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान रहे तो एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर है। गोपी के द्वारा पकड़ लिया गया जो ईश्वर, और इसके बाद रुदंतम मुहू बार बार रो रहा था हाथ पकड़े जाने पर, और अपने दोनों करकमल से कभी कभी आंखों को मल रहे थे, और उसे पफक पफक कर रो रहे थे। रोने से, लंबी सांस चलने से जिनका तीन रेखा से युक्त कंठ कांप रहा था, और इस तरह से मां के तरफ क्रिया को करके जो खड़े थे, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो रस्सी में बांधे गए। तो ईश्वर क्या है जो रस्सी में बांधे गए? ये भगवान की लीला है। तो सतव्रत जी कहते हैं वास्तव में ये दामोदर है, उनके उदर में दाम लगा हुआ है, रस्सी लगी है, लेकिन वास्तव में वे भक्ति बद्ध, भक्ति से बांधे गए। कृष्ण बंध ही गए प्रेमवान की दोरिया। वास्तव में वो साधारण रस्सी से भगवान नहीं बन सकते, वो स्नेह की डोरी। उस घटना का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के नवे अध्याय में है, थोड़ा सा उनसे कह लेना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध के आठवें अध्याय में गोपियों के द्वारा कृष्ण के विषय में बहुत सी शिकायतें हैं माँ यशोदा के पास। वास्तविकता यह है कि गोपियां श्री कृष्ण के बाल चापल्य को देखने के लिए यशोदा के पास आती थी, शिकायत करने के लिए नहीं आती थी, देखने के लिए आती थी और सुनने के लिए कृष्ण क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे माँ से बातें करते हैं। परंतु आने का कोई न कोई बहाना चाहिए, वो कैसे आ जाए किसी के घर में कम दिन छोड़कर। तो कृष्ण की लाल लीलाओं का नटखट का ब्यौरा देने के लिए आती थी बहाना लेकर, यह आकर के कहती थी देखो माँ, यह है आपका बेटा, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, यह असमय में गाय के बछड़ों को खोल देता है। बछड़े प्राय बंधे रहते हैं, लेकिन जब गौवें वन से लौटती थी उस समय अथवा दिन में भी कोई गाय घर पर आती थी तो उसके बछड़े को असमय में खोल देता है। असमय वत्सन मुंचन, क्यों? श्री कृष्ण की कला थी, वे जानते थे कि बछड़ों को जब खोल दिया जाएगा तो गायों को पीने लगेंगे, तब गोपियां अपने अपने घर से निकल करके बछड़े को पकड़ने की चेष्टा करेंगे घरों से निकल कर। तो इस समय हम लोग जा करके घर में माखन की चोरी करेंगे, जब तक तो घर में है तब तक चोरी करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। तो चोरी का एक तरीका था, एक ही समय में 10-20-50 बछड़े खोल करके भगाने, तो संभालना होता तो बछड़े खुल गए, गोपियां से अपने घर से दौड़ती थी इधर उधर बछड़ा बुकने के लिए, कोई धोने लगती थी, कोई कुछ कोई कुछ, और उसी समय सब ग्वाल सखा घरों में घुस करके और माखन खाने लगते थे। किसी किसी दिन जब बछड़े खोलते समय पकड़ लिए जाते थे कृष्ण, और कोई गोपी डांटती थी, मां जोशा वैसे कह रही कि जब हम डांटती हैं क्रोध समझाता है ऐसा, जब हम डांटती हैं तब ये हंसता है, उसको दुख नहीं लगता है कुछ भी मारने की धमकी देने पर या गाली देने पर, ये हंसने लगता है। और मां तर्क क्या करता है, तर्क देता है तुम्हारे बछड़े को खोला हूं कि अपने बछड़े को, तुम्हारे बछड़े को खोला ना तो तुम्हारा बछड़ा गाय का दूध पिएगा बलवान बनेगा, तो क्या मेरे काम में आएगा तो तुम्हारे काम में आएगा, दिन भर बछड़े को बांध करके मार रही हो ये दूध पिएगा नहीं, कोई तो अपना बछड़ा थोड़े ला करके पिला दिया है, तुम्हारा ही तो बछड़ा पिलाया ना। आप गोपियों का कोई क्रोध रह नहीं जाता था, वास्तव में कभी भी उनका क्रोध नहीं था, क्रोध समझाता और यह खूब जानता है कि हम लोग किस समय घरों में नहीं रहती है, इसको पूरा पता हो गया है 24 घंटे का, पूरा रूटीन जानता है कि कब कहाँ अवसधान रहती है। अच्छा रानी जी अकेले आता तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा छोटा सा बालक है, लेकिन उसका पूरा दल है पूरा दल। अच्छा उस पर भी माँ जो सुधर कहते जाने दो माखन ही खा गए, तो खा गए इसके लिए थोड़ा चिंता है, ये जितना खाता है उससे तो 100 गुना ये बानरों को और इधर उधर फेंक देता है, और बर्तन भी फोड़ देता है, भांडन भी नपती बर्तन भी फोड़ देता है, और बच्चों को चीटी काटता है, उनकी शिखा को बांध देता है, जब उठते हैं तो रोने लगते हैं बच्चों को तंग कर देते हैं और जिस घर में माखन नहीं मिलता है थोड़ा ऊंचा रहता है उसके लिए उपाय रचता है, पीढ़ों को ऊपर करता है अथवा किसी गोप के पीठ पर चढ़ करके, तो माँ ने कहा कि थोड़ा और हाई रखो, थोड़ा और ऊंचा रखो, कितना उपाय करेगा नहीं, जहां पर इसका हाथ नहीं पहुंच पाता है तो नीचे डंडे से उसमें छेद कर देता है और मुख रोकता है ऐसे सभी बारी बारी से मुख रोक रोक करके पीते हैं खाते हैं, कैसे पता लग जाता है कि इसमें तुम्हारा माखन रखा हुआ है, क्या कहें माँ जी, वो जो माखन है स्निग्ध होता है, जहां तक बर्तन में रहता है तो सिक्त हो जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर यहाँ तक भीगा हुआ है ये जरूर ताजा माखन है, इसमें से यह है वह है ऐसे है ऐसे है, बहुत उपाय करता है। और तो माँ जो सोने कहा किसी तरह से उसको दूर करो, ढक करके रखो दूर करो, तो कहती दूर भी कैसे रखें, जिस घर में माखन नहीं मिलता है उस घर को इतना साफ देता है, कहता है इसमें दरिद्रता का निवास है और कब इस घर को जला दूंगा, बाप रे बाप यहां मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो इस डर से हम लोग ठेके को थोड़ा कम ऊंचा रखती, हम लोगों को इसके लिए रखना पड़ता है, नहीं रखने पर इतना गाली देता है, इतना गाली देता है कि और वास्तव में जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं उनको कृष्ण बहुत गाली देते हैं, और भगवान के अभिशाप से ही घर में दरिद्रता बसी रहती है, भगवान के खाने के लिए हमेशा रहना चाहिए उनको भोग लगाना है बार बार, तो जिन घरों में नहीं मिलता है वहां पर इस तरह से करता है। और दूसरा उत्पाद करता है कि यदि जिस घर में माखन नहीं मिला तो उस घर में लिपे पोते स्थान पर देवताओं के स्थान में जाकर पेशाब कर देते, इतना उत्साह कर रहा है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा साधु जैसा है, ऐसा साधु जैसा है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही थी, वह देखने के लिए जाती थी और श्री कृष्ण अपने माँ का आंचल पकड़ करके पीछे छिपे रहते माँ के पास। हम देखते हैं कि माँ पर क्या रिएक्शन होता है। लेकिन गोपियां कितना भी उलाहना देती है तो माँ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, वो हंसने लगती है। अच्छा ऐसा किया। ये सुनते ही कृष्ण सामने आकर के गोपियों को कहते हैं लाना दे रही। आखिर मेरी माँ है ना, मुझे थोड़े मारेगी। और यही देखने के लिए गोपियां रह जाती। लेकिन इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कथा चालू कर रहे हैं तो उसके कथा के उपक्रम में प्रारंभ में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि गोपियों का बार बार उलाहना आने से माँ को चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र का स्वभाव बिगड़ रहा है, आदत बिगड़ रही है। हमारे घर में इतना दूध है, माखन है, दही है, घी है, सब भरा पड़ा है और ये एक राजा का पुत्र है, मेरा पुत्र है, दूसरे के घर में जा करके खा रहा है, वो भी चोरी करके, ये ठीक नहीं। उसकी आदत बिगड़ती जाएगी, आज माखन चुरा रहा है तो कल दूसरा भी चुराएगा, किसी का आभूषण चुराएगा, कपड़ा चुरा सकता है। तो जब चोरी की आदत है तो आज तो बच्चा है, बुद्धि नहीं है कि धन चाहिए या चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि विकसित होगी तो फिर आगे के निर्वाह के लिए धन चुराएगा, आभूषण चुराएगा। और कभी आदत और बिगड़ती गई तो जवान होने पर किसी की छोरी को, लड़की को चुरा कर ले जाएगा, ये भी तो कर सकता है। तो माँ को बहुत चिंता हो गई अपने पुत्र के प्रति। माँ यशोदा पूर्ण कृष्ण स्नेहमयी है, कृष्ण के सेवा के अलावा, स्नेह के अलावा माँ के शरीर में कुछ भी नहीं। जो भी सोच रहे थे कृष्ण के हित के लिए कि अपने बच्चे को ठीक करना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं जाने देना चाहिए, तो इसने बहुत मनोयोग के साथ यह निश्चय किया कि लगता है कि मेरे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, यदि हमारे घर का माखन अच्छा होता है तो मेरा पुत्र दूसरे के घर के माखन की सेवा क्यों करता, क्यों चाहता। तो विचार करके एक दिन सोची कि अब ऐसा माखन उत्पन्न करूंगी, ऐसा माखन उत्पन्न करूंगी कि कृष्ण दूसरे के घर में जाने का नाम नहीं लेगा। अपने घर में जब माल मिलेगा खाने को तो दूसरे के घर में क्यों जाएगा। फिर माँ ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। तो इसके लिए एक दिन माँ ने पद्मगंधा गाय का दूध मंगाया। ब्रज में कुछ स्पेशल गौवे रहती थी जिन्हें, जिनके शरीर से कमल की गंध निकलती थी, पद्म की गंध, उन्हें पद्मगंधा गाय का। और उन गायों को स्पेशल चरागाह में चराया जाता था जहां की घास सुगंधित घास कोमल कोमल। जैसे आजकल के लोग जो ये डेयरी देखते हैं, गौवे बंधे रहते हैं और चीज खाते रहते हैं, अनाज वगैरह, वो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गौवे घास खा करके कितना सुखी होते हैं, चर करके खास करके अपने मुख से। तो सुगंधित गायों को चरा, घासों को खिलाया जाता, चराया जाता था उन गायों को, उनका दूध लेकर के वो औटी, औटने का अर्थ गर्म करना, बार बार गर्म करना गाय का। उसके बाद उसमें जामन दिया और दीपावली के दिन भोर में वह स्वयं ही दही मथने लगे। इंद्र पूजा का दिन था, एक दिन के बाद ही इंद्र पूजा की तैयारी चल रही थी। बहुत वर्ष वार्षिक नियम था तो घर के वासियों को माँ यशोदा ने अन्य कार्यों में लगा दिया कि अब तुम लोग दूसरा काम देखो, कृष्ण के लिए मैं दही मथूंगी। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और माखन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए माँ ने रेशमी साड़ी पहना कौन सा वस्त्र पहन करके कौन काम किया जाता है, वस्त्र का भी बहुत महत्व है। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं तो स्वच्छ साफ धोया हुआ वस्त्र पहनते हैं, वैसे नहीं कि पैंट पहन करके और चले गए आती करने, ऐसा कभी नहीं होता है। ये पैंट सेंट में दूसरा प्रमाण होता है, देवता में कभी नहीं पहनते। पैंट सेंट से वासुरों का पहनावा है वास्तव जैसे, और वो घूम घाम करके पश्चात जगत से आया है ना, उसके पर अंग्रेजों के आने के पहले इधर लोग कोई पैंशन नहीं पहनते, पैजामा पहनते थे चूड़ीदार। तो सब चीज का महत्व होता है। छामुन दास प्रतिकटी तटे विभ्रति सूत्र मध्यम पुत्र स्नेह स्मित कुछ युगम जात कम पंच शुभ्रु रज्या कर सम्भु चलत कंकड़े कुंड बेचा सीनम वक्रम कदर बिगलन मालती निर्म मंथन। श्री सुखदेव गोस्वामी माँ जशोदा के दधिमंथन के समय जो छवि हो रही थी उसका वर्णन कर रहे हैं। छामुम बास पृथु कटी कटे, माँ जशोदा पूर्व युवती स्त्री थी, आयु ज्यादा थी लेकिन शरीर पूर्व यौवन में था। भगवान के माता पिता कभी वृद्ध नहीं होते, अगर वृद्ध शब्द का प्रयोग कहीं है तो उसका अर्थ ये होता है बड़ी उम्र, बड़ी उम्र उसका अर्थ होता है। तो शरीर बुरा नहीं होता है, पूर्ण ज्योति है, उसके बड़े बड़े नितंब है और कमर में लहंगा कस करके बांधी थी। छामुम बास पृथु कटी तटे विभ्रति, पृथु कटी तटे कटी कमर को कहते हैं और तट बात नीचे नितंब, ऊपर तो छीण होता है उधर कटी, और तो पृथु नितंब पर वह रेशमी लहंगा कस करके बांधी थी। छामुम बास पृथु कटी तटे विभ्रति सूत्र मध्यम, सूत्र मध्यम खूब अच्छा से मध्यम बात बांधा हुआ सूत्र से बांध दी थी। यह सूत्र मध्यम से तत्पर जो है करधनी बेल्ट चौड़ा सोने का बांधी थी उसके ऊपर। पुत्र स्नेहस्मित कुछ जुगम जात कंपन चुग, और मां के दोनों स्तन चुचुआ रहे थे। कृष्ण के लिए बहे मत रहे तो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए दोनों स्तन उमड़ गए थे, तो स्तनों से दूध चू रहे थे। बहुत सुंदर भाव लिखा है मतलब है कि मां के दूध जो स्तन से चू रहे थे, तो वे दूध सोच रहे थे कि मां आज ऐसा माखन निकालने जा रही है कि कृष्ण खा लेंगे माखन, उनका पेट भर जाएगा, तो आज हमको नहीं पिएंगे। तो दूध विकल हो रहा था, इसमें बाहर आ रहा था कि मां की दृष्टि पड़े, लेकिन मां तो दही मथने में तल्लीन थी, तो दूध चू रहे थे, चू करके मां की कंचुकी के ऊपर आ रहे थे। पुत्र स्नेह से कुछ जिलो, पुत्र के स्नेह से दोनों चुचुआ रहे थे। जात कंपन चुग और अस्तने में कंप हो रहा था, एक तो ऐसे चलाने से कंप हो रहा था लेकिन कृष्ण आज हमको नहीं पिएंगे माखन का तो संतुष्ट हो जाएंगे, इस भय से अस्तन कांप रहे थे। रज्जु आकर्ष श्रम भूत चलत कंकड़ कुंड ले चल, रज्जु आकर्षित कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि दही का बड़ा मटका होता है और उसमें मथानी होती है, मथानी को चलाने में दही को आंदोलित करना पड़ता है, तो मेहनत का काम होता है। देखने में लगता है कोई गोपी को चला रहे बहुत आनंद की बात है, लेकिन उसे मेहनत लगता है, हाथे हाथ थक जाता है। याद है हम झारखंड कृषि में एक बार पहाड़ पर गए थे, एक जगह पर एक गोपी मथ रही थी अपने बच्चे को गोद में लेकर के, तो हम लोग टेप देखा कर लिए थे। हमको तो याद आ गया कि अरे भगवान इसी तरह गोद में करते रहते हैं, मां मथन मंथन करती होगी। हम लोग टेप कर रहे थे घर घर आवाज गतिमंथन के शब्द को रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा उस गोपी से, तेरे बच्चे को बुला सकती हो किसी तरह से और ऐसे जब ही कहा तुम ही बच्चा रोने लगा या ये करने लगा वो भी आया हुआ है टेल पे तो हमारे बच्चे को पुष्ट रो रहा है पुष्ट रो रहा है। उसे हमने कहा कि बिजी जरा हम मत थे तो हट गए हम मछले लगे तो दही इतना बड़ा मटका था दही अभी गाढ़ा था तो चलाने में हाथ दुखने लगा। तो सुखदेव को स्वयं वर्णन करते हैं कि रज्जा पर्श श्रम भू चलत कंकर कुंडले रज्जू खींचने में भुजाओं में श्रम हो रहा है भुजाओं में श्रम होने सारे शरीर सिंह हो गया मुख पर पसीने की बुंदे आने लगी। भोर का समय था दीपावली का सवेर है भोर सन्मा के शरीर पर पसीना आने लगा विशेषकर तो मुख पर शून्यम वक्तर कबर अभिगलन और कबर में जोड़े में जो मालती के पुष्प खोसे गए थे वे सब गिरने लगे थे चरण इस तरह से दही मत रही थी और दही मत उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को ही गाती जा रही थी। इस तरह से मां के स्वरूप का वर्णन किया है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा ये तो सब सप्ताह में बहुत विस्तार किया जाता है। तो इस तरह से जब मत रही थी मां को केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा था कृष्ण की लीलाओं का उनका चलना हंसना खाना चोरी करना या पूतना उद्धार आदि पूतना का गर्भ आदि यही सब लीलाएं गाती जाती थी सोचती जाती थी उसको ध्यान नहीं था दही मथने का काम कर रही थी मन भगवान में था बाल लीला में प्रत्येक अकस्मात भगवान प्रतिदिन जब जगते थे उससे पहले जग गए और जगे गए कृष्ण तो उन्होंने मां को देखना प्रारंभ किया। बच्चों का स्वभाव होता है वे मां के गोद में रहते हैं और मां का आश्रम पीते रहते हैं पीते समय कुछ गाते भी हैं अपना आनंद उच्छ्वास प्रकट करते हैं मुनि मुनि कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो कृष्ण तो मां के गोद में ही सोते थे पीते रहते थे रात में जब भी उनकी इच्छा करे पीते रहते थे भोर में पीते रहते थे उनको नहाने धोने मुंह धोने का कोई नियम नहीं ऐसे ही वैसे कभी नहीं होते जो ही जग है तो आंख बंद किए किए ही और स्टिल देखने लगे तो मां कहा है जैसे हाथ किए तो बहुत दूर हाथ करने पर मां नहीं थी मां तो दलमंथन कर रहे थे बैठ कर थी नहीं देखने लगे मां कहां चले गए करने लगे। इस तरह से रो रहे थे जैसे उन्हें बहुत भूख लगी है बहुत भूख लगी मां कहां गई कहां गई इस तरह से वे ये करते हुए रोते हुए खोजने लगे मां को तो उधर से आवाज आ रही थी दलमंथन की और मां का कंठ पहचानते थे मां गा रही है इनकी ही लीलाएं गा रही तो मां का स्वर सुन करके धीरे धीरे वहां चले गए जहां वो दही मत रही थी। तो भगवान देखने लगे कि मां तो बिल्कुल विभोर है इसको तो क्या करें कि यह दही मंथन कर्म रोके और हमको दूध पिला जबकि इनके लिए ही माखन निकाला जा रहा है लेकिन फिर भी भगवान के अलीला उन्हें सोचा कैसे रोके। भगवान ने एक उपाय सोचा कि जिस मंथन दंड को घुमा रही है उसी को हाथ से पकड़ करके ब्रेक लगा दें घूमने में पाए तब मां की बाह वृत्ति हो और वही किया उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से मंथन दंड को नीचे पकड़े घड़ा के ऊपर ऐसे पकड़ करके आप जान करते तो अनंत शक्ति भगवान जिसको पकड़े वो ऐसे मंत्र सोगा घुमाते थे तब तक अकस्मात स्टक हो गया नहीं आ रहा था तब उसको ध्यान से देखा क्या हो गया मंथन दल खून क्यों नहीं रहा तो जब वो आंखें खोली गाय देखी थी तो व्यक्ति एक कृष्ण आ गया कृष्ण पकड़ा है मैं सोचने लगे अच्छा कितना बुद्धिमान है भगवान इसकी बुद्धि भी विकसित कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता भी किस तरह से पकड़ा मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं उस पर प्रसन्न हूं लेकिन देखने लगी कि आगे क्या करता है मां उठाई नहीं कृष्ण को तो कृष्ण देखे कि मां ने काम रोक दिया और देख रहे कि क्या करता है तो श्री कृष्ण उसके बाद मां के हाथ को पकड़े ऐसे ऊपर हाथ करके अपने
हाथ को पकड़े और एक पैर घड़ा कर दिए मटकी के ऊपर और माँ का बांह पकड़ करके ऐसे और उसके गोद में चढ़ गए। माँ ने कोई प्रयास नहीं किया, माँ यह देख रही थी कि बच्चे की बुद्धि विकसित हो रही है और रोज रोज चोरी करते करते ही बहुत बुद्धि हो गई थी। वो चढ़ करके स्वयं ही माँ की एक कंचुकी को हटा करके और उनका जो आहार है दूध वो पीने लगे, खूब आराम से पीने लगे। पीने लगे तो प्रेम के भूखे भगवान उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, माँ का स्नेह में दूध वो कम नहीं हो रहा था, दूध कम नहीं हो रहा था और कृष्ण की भूख जा नहीं रही थी, दोनों में हो रहा था। प्रेम में और सेवा हो रही थी, भगवान को दूध पिलाती जा रही थी, पिलाती जा रही थी और भगवान पीते जा रहे थे, वो देख सकती है। इसी बीच अंगीठी पर रखा हुआ पद्मगंधा गाय का दूध लौटा जा रहा था, उसमें उफान आ गया आंगन में, उफान आ गया। हरिश्चंद्र जी कहते हैं उस दूध ने यह सोचा कि भगवान अपनी माँ का दूध पीकर तृप्त हो जाएंगे तो मैं जो आग में मरमर कर तपस्या कर रहा हूँ मैं किस काम आऊंगा, इसलिए माँ के सामने आत्महत्या करनी चाहिए तब उसको दया आएगी। तो शायद ये सोच करके दूध उबल गया, आग में कूदना चाहता था, तब तक माँ की दृष्टि पड़ी तो कृष्ण की तृप्ति या तृप्ति पर माँ का ध्यान नहीं गया, वो तुरंत कृष्ण को हटा करके जमीन पर रख करके और दौड़ी दौड़ी, जो ही जा रही थी तभी दूध शर्म के मारे नीचे आ गया। उसने सोचा कि माँ के प्रेम सुखने में बाधा दिया, तो माँ ने देखा कि दूध औटा जा चुका है तो उसको उतार करके रख। सत्य बल्भाचार्य जी ने प्रश्न किया है कि कृष्ण को लेकर के ही क्यों नहीं गए, कृष्ण तो इतना भारी नहीं थे, दूध उतारने से तो कृष्ण को लेकर के गई होती, मेरे स्वयं उत्तर देते हैं कि नहीं, कृष्ण को लेकर के गई होती तो जाने में कृष्ण के ओठों में लग जाता शरीर दुख होता या जादू इतने वेग से नहीं जा सकते, तो इसलिए कृष्ण को उतार करके गए। अब भगवान को क्रोध आ गया, बाप जी बाप मेरी तृप्ति पर उसका कोई ध्यान नहीं है, थोड़ा दूध जल ही जाता तो क्या हो जाता, इतना दूध भरा पड़ा है घर में और थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मेरी इतनी भारी उपेक्षा की है कि बच्चे भी मान चाहते हैं, वास्तव छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ी बड़ी बात सोचते हैं, क्यों हमको दूध से उतारी, क्यों नहीं पीने दिया, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए और हमारा पुरस्कार कर रही है, तुम्हारा पुरस्कार क्या दो मिनट के बाद आकर तो पिलाएगी, फिर तो उसको आकर तो पिलाना ही था, लेकिन भगवान इसी करे लीला की क्रोध आ गया, दिव्य क्रोध लाल लाल ओठों का स्पर्श करके क्रोध धन्य हो गया। अभी प्राकृत क्रोध भगवान में संभव ही नहीं है, लेकिन क्रोध की मुद्रा देखने लगे, ओठ फड़कने लगे भगवान के क्रोध से, इस तरह से कंजूस बन रही है, थोड़ा सा दूध की हानि नहीं सह सकती और मैं अपना धाम छोड़कर इसका पुत्र बना और मेरी इतनी उपेक्षा है, सब लोग सारा काम छोड़कर के मेरी सेवा करते हैं और मुझको फेंक करके जा रही है दूध बचाने के लिए, ठीक है ठीक है। तो क्रोध आ गया, क्रोध आते ही अपने लाल लाल ओठों को अघर को भगवान अपने उजले उजले दांतों से दबा दी, एक क्रोध का स्वभाव होता है, अगर कोई क्रोधित होता है तो अपने ओठों को दबाता है। हरिश्चंद्र जी कहता है लगता था कि रजोगुण पर शत्रुगुण शासन करने लगा है, ठीक नहीं है, लाल रंग रजोगुण का है और श्वेत शत्रुगुण का, तो मानो भगवान के ओठों पर कंट्रोल कर रहा है शत्रुगुण, क्रोध ठीक नहीं है। जो कुछ भी है इस तरह से क्रोध में हो गया और जोड़ने लगे, क्रोध में व्यक्ति होता है तो तोड़ फोड़ ही तो करेगा और क्या करेगा, छोटा सा बच्चा सोचने लगा अच्छा दूध बचा रही है ना, मैं उस घर में आग लगा दूंगा, बर्बाद करके रहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तो वो बता देता, क्रोध में देखने लगे इधर उधर एक छोटा सा मसाला पीसने वाला लोहा मिला, पत्थर का टुकड़ा, उसको सीधा फुट होता था, वो मिल गया, सोचा छिटका मिल गया। तो ये जो मटका जो कई वर्षों से दूध बड़ी खाया है, मजबूत है, थोड़ा सा दूध को बचाने गईगा, मैं इतने अच्छे मटके को अभी चूर्ण कर देता हूँ और इसका दही भी बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतनी बड़ी हानि होगी। तो क्या सोचने लगे, क्या करूं, इसको फोड़ना चाहते थे, लेकिन सोचे कि अगर आवाज कहीं कान में चली जाएगी मां के तो आकर के खूब अच्छी मरम्मत कर दे। तो इसीलिए बड़ी चतुराई से उसके पेंडी में जहां पर दही भरा हुआ था जानवर, उसके नीचे उन्होंने मारा ऐसे जोर से कि आवाज न निकलने पाए और छेद हो जाए, मटका पूरा न फूटे, छेद हो जाए, इतना छेद हो जाए कि दही सारा बह जाए। उसके बाद तो माटी के बर्तन की मरम्मत होती नहीं है, एक जगह छेद हुआ तो हुआ, खत्म हुआ। ऐसे मारे तब तक दही जो पतला हो चुका था मछली से बलबल बलबल बह करके चारों तरफ फैल गए। अब तो भगवान मेरे खेल में पड़े कि हम कहां भागे, अब कहां भागे, किस कहां जा, जो भगवान तीन पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिए थे, वे अब दही के क्षेत्र को नाप लांघने में समर्थ नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें। तो सोचे कि मां तो अब आने ही वाले तब तक उसी दही पर छत छत भागे, क्या रखते हैं भगवान का अद्भुत माधुर्य। जैसे भागने लगे, भाग करके गए दूसरे घर में जहां पहले का माखन रखा हुआ था, उसको उतारे, मतलब उखल को उल्टा किए, उखल को तुरंत उल्टा करके और ऊपर से उतारे, उतार करके और खाने लगे। और बानर जुट गए, उसमें उनको भागने लगे और देखते जाते थे कि मां आ रही है, मां आ रही है, चौक विशंखित आंखों से देखते जा रहे थे। कभी कभी खाने का नाटक करता, आंखों में आंसू भर गया था, ये दिखा रहा कि मैं भूख से मर रहा हूं और फिर भी मेरी इसने उपेक्षा किया है, तो क्या करूं, बासी माखन खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, जीऊंगा कैसे। इतना छोटा सा बच्चा, वास्तव में जो कुछ भी भगवान कर रहे थे वो भी मां के प्रति स्नेह से कर रहे थे। बच्चे जब इस तरह की बात माँ के साथ करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है कि हमको, हमारे साथ उसकी प्रीति है, हमको अपना समझ रहा है, उसको विश्वास है कि माँ हमें मनाएगी, हमको मिठाई देगी, चाहे करेगी वह करेगी। वास्तव में एक बहुत बड़ा सुख है संसार में, बच्चे जब बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, रुठते हैं तो उनको मनाने में बहुत बड़ा सुख मिलता है। ये गृहस्थों को इसका अनुभव होता है। एक कवि ने कहा है कि यदि इस संसार में अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने का सुख और रूठे हुए बच्चे को मना करके गोद में लेकर के उसका हंसता हुआ चेहरा देखने का सुख नहीं होता तो कौन इसकी हस्ती को स्वीकार करेगा। ये दो सुख है, अपने बच्चे को गोद में खिलाने का और अपनी रूठी हुई प्रिया को मनाने का, ये दो सुख है। और ये था इस घर की हस्ती में कौन पड़ेगा। और वास्तव में बात बिल्कुल सत्य है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी पत्नी से, रुक्मिणी जी से परिहास किए कि तुम हमको छोड़ दो, जाओ दूसरे को से विदा कर लो। कृष्ण ऐसे अकस्मात कहने लगे, कहने हाँ ऐसे नहीं, हम तुम्हारी चतुरी नहीं कर पाएंगे, हम स्त्री में आसक्त भी नहीं रहते हैं, हमसे तो वही लोग प्रेम करते हैं जो फक्कर रहते हैं, किंचन रोटे, हमसे दूसरे लोग प्रेम नहीं करते। तो रुक्मिणी जी माने पूछी कि आप विवाह क्यों किए हमसे। भगवान कहे तो हम तो केवल जरा संघ सुष्पाल आदि का मान मर्दन करने के लिए तुमको लाए थे, तुमने हमें तो यह शक्ति नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन मिले, सारी चाहते हो तो किसी राजा से विवाह कर लो, विवाह में अगर नया कुछ खर्च लगेगा तो मैं भी मदद कर दूंगा। लेकिन अच्छा हुआ उस समय तुमने सोचा नहीं, कुछ भिखमंगों ने मेरी प्रशंसा कर दिया, नारद आदि ने इसी आदेश लाकर तुम मेरे साथ विवाह कर लेते हो। तो रुक्मिणी जी नहीं समझ पाए कि भगवान परिहास कर रहे, वो तो गिर गई बेहोश होकर। फिर भगवान उठाए, उनके मुख को पोछे, केशों को ठीक किए, जैसे गोद में बैठा करके और लगे कहने, तुमने ये नहीं समझा कि मैं परिहास कर रहा हूं। तो रुक्मिणी जी पूछती है कि आप परिहास क्यों किए, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय गृहस्थ के लिए यही तो एक सुख है कि कभी पत्नी से एकांत में प्रयास किया जाए और ये रूठ जाए तो मनाया जाए, लेकिन तुम तो रूठ भी नहीं रही हो, इतनी भोली भाली हो कि भद से गिर पड़ी। बताओ, मैं तो ये देखना चाहता था, भगवान कहते हैं मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे ऐसी बात कहूंगा आराम तो तुम अपने ओठों को दांत से दबा लो, मेरे तरफ से अच्छी चित्रण से देखो और डांट के कहो कि कभी ऐसी बात मत बोलना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन हमको तो यह अभी सुख नहीं मिला, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने कहा है कि घर गृहस्थ मिला एक सुख है। तो इसी तरह से भगवान जो मां के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वास्तव में मां को सुख दे रहे हैं इन व्यवहारों से। बाहर से देखने में लगता है कि ये क्रोध की लीला कर रहे हैं। तो दही के ऊपर से नमे नमे पैर सजा करके मां कल खाने लगे एक उखल के ऊपर। मां जब दूध उतार करके आई तो देखी कि मटका तो फूट गया है, दही फल गया, तुरंत समझ गई कि किसका काम है। ऐसा नहीं कि कोई अकस्मात ईटा गिर गया ऊपर से फूट गया या बिल्ली गिरा, वो समझ गई तुरंत और हंसने लगी, हंसने लगी दैव गति पर कि मैं थोड़े से दूध के लिए दौड़ करके गए और उधर इतनी बड़ी हानि हो गई, अद्भुत दैव की गति। और हंसने लगी कि बच्चे की भावना देखो, वो थोड़े से ही अपना पुरस्कार मान गया, अपने इंसल्ट मान गया, तो देखने लगे हंसने लगी। लेकिन मां ने सोचा कि अब तक गोपियों ने कहा था कि हमारे घर का बहुत बर्तन थोड़ा है, लेकिन आज तो इस घर का ही फोड़ दिया, सचमुच ही फोड़ रहा होगा, फोड़ते फोड़ते आदत हो गई है इसको, इसीलिए हाथ में छड़ी ले लिया धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। मां कैसे किसी का प्रहार कर सकती थी, वो तो पूरे स्नेह मई है, केवल धमकाने के लिए हाथ में छड़ी लेकर के और दबे पैर से धीरे धीरे चलने लगे जिससे उसका नीपुर न बजे, धीरे धीरे पैर रख रही थी। कहां गया? कृष्ण का अन्वेषण करने में मां को कोई असुविधा नहीं हुई क्योंकि चरण चिन्ह बता रहे थे कि वो वहां से कहां गए। तो उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि पहले के ऊपर से भाग रहे हैं तो चरण की छाप पड़ती जा रही है, और भगवान ये समझ रहे थे कि मैं तो सिक्योर हूं, मां मुझको नहीं देख पाए, और मां चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए जा रहे थे धीरे धीरे। तो देखी तो एक उखल उल्टा करके उसके ऊपर बैठा है और छीके से मटका उतार लिया है, खा रहा है और बांधों को दे रहा है। तो पीछे पीछे और धीरे धीरे जाने लगे तब तक कृष्ण ने देखा मां को, देखते ही आह कह करके मटका छोड़ करके चले जा रहा, और कौन खाने जाए उसी को यहां लिखा गया उलू खला खाओ मानो, उखल से बहुत जोर से भागे, रोते हुए गिराते हुए भागे, भागे तो मां भी पकड़ने के लिए चल दी, पकड़ने के लिए चलो। पहले तो अपने घरों में आंगन में इधर उधर भागते रहे, उसके बाद निकल करके गोकुल की गली में भागने लगे। भागते भागते सुबह सुबह में संवरण करते हैं कि मां तो बिल्कुल थक गई, बड़ा शरीर था और कृष्ण तो छोटी कार के समान भाग रहे थे बहुत तेज गति से। वैसे भी सच्चिदानंदन भगवान भाग रहे, मां तो सोचते कि छोटा बच्चा है कितना भागेगा, अब पकड़ लूंगी अब पकड़ लूंगी, लेकिन बहुत देर तक भागते, लेकिन अंत अत्यंत अंत में मां जशोदा ने झपट करके कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान ने देखा कि मां थक गई है तो स्वयं ही पकड़ में आ गए। कृष्ण पीछे देखते जाते थे, पीछे देखते जाते थे, भागते जाते थे, और जब निकट देखे मां को तो हाँपते जाते थे, हाँपते जाते थे, फिर देखते थे, भागते थे, हाँपते जाते थे, हाँपते थे, उनके कंठ कांप रहे थे। भागते भागते हम तो भगवान ने यह नाटक किया तो मैं तो बिल्कुल थक गया, मां गई और जा करके अपने बाया हाथ से ऐसे पकड़ी, हाथ को आगे करके पकड़ी, पीछे से नहीं पकड़ी, कृष्ण को चोट लग सकती थी। मान लो जो पीछे से कुछ पकड़ती है और कृष्ण झटका देता है तो उसके शरीर में
रो रहे थे रुदंतम मुहूर्त में प्रजुग्नम मृजंतम, बारम्बार रो रहे थे, आंखों से आंसू पोस रहे थे, दाहिने हाथ को मां ने पकड़ा था तो बाएं हाथ से पोस रहे थे, बाद में मां ने सोचे कि ये हाथ दुख गया होगा तो बाएं हाथ को पकड़ ली, तो दाहिने हाथ से सोचने लगे। और कभी भी कृष्ण रोते थे तो मां बड़े स्नेह से आंसू पोछती थी, लेकिन भगवान आज इतना लाचार हो गए हैं, बेचारा हो गए हैं कि मां ही मारने आई है, अब उनका आंसू दूसरा कोई पोछने वाला नहीं था तो स्वयं ही आंसू पोछ रहे हैं, अगर आंसू पोछने नहीं आ रहा था, आंसुओं से काजल गीला होकर के उनके गाल पर इधर उधर फैल रहा था, इससे उनकी और शोभा बढ़ रही थी, और सुंदर लग रही थी। ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं सत्यव्रत जी कह रहे, जिस ईश्वर को ऐसी दुर्दशा हो रही है उसको मैं प्रणाम करता हूं। घूम हो रहे थे रुदंतम मुहूर्त नेत्र जुग्मे मृजंतम करांभोज जुग्मे निशातंक करांभोज जुग्मे, भगवान के दोनों हस्त कमल के समान सुकुमार के अरुंधी से अपनी आंखों पर मल रहे थे, काजल फैल रहा था अपने गाल में जल रहा, उसे और सुंदर लग रहे थे। और मुहूर् श्वास कम पत्र देखा कंठस्थित ग्रह दामोदरम भक्ति बार बार फफाते रहते फफाते रहते, माँ के तरफ देख करके कि हाय रे माँ जब मेरे विपरीत हो गई तो दुनिया में मेरा कौन सहारा रहा, तो सोच रहे। और जब माँ ने खास करके रस्सी उठाया तब तो और अब तो पशु जैसे बांध कर रखे, कृष्ण को यह भाव हो गया कि किसी दिन नहीं खोलेगी, जैसे बांध करके पशुओं को घास डाला जाता है ऐसे ही बांध करके रखेगी, आए बाप आए दादा ये करने लगे, आप कैसे जीऊंगा, खेलने को नहीं मिलेगा, कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, इस तरह से रो रहे थे फफक रहे थे। जो बच्चे रोते हैं आपने देखा होगा लंबी सांस चलती है और गला वाष्प से भर जाता है, आंसुओं से भर जाता है, तो इसमें सांस लेने में भी कुछ कठिनाई होती है और बोलने में, तो इस तरह पपक पपक करके रो रहे थे। कृष्ण के कंठ में तीन रेखा शंख जैसे थी, ग्रीवा के ऊपर मां की तरफ बेचारी दृष्टि सातंक नेत्र भयभीत नेत्र से और अनुकंपित, माँ अनुकंपा करे मेरी दशा को देख करके दया करे, मुझे बांधे ना, मुझे छोड़ दे, मुझे न टूटे, इस तरह से देख रहे थे, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। सातंक नेत्र, नेत्र में इतना भय था और इतनी आशा भरी थी दया दृष्टि हो जाए माँ की छोड़ दे, लेकिन माँ तो माँ थी, रोज तो क्षमा किया था लेकिन आज नहीं क्षमा करेगी, मां ने देखा कि बहुत डर गया है, बहुत डर गया है, तो छड़ी छोड़ दिया, छड़ी फेंक दिया, जब छड़ी फेंक दिया शुरू में, जब छड़ी फेंक दिया तो कुछ आश्वासन आया और तब तक रस्सी उठाने लगी, तो छड़ी से तो एक तो छड़ी पीट करके छोड़ दी, तो दिन भर घूमते, लेकिन अब तो पशु की तरह बांध कर रखेगी और रोने लगे, बांधने लगी मां। सबसे पहले अपने केस में जो जोड़ा बांधी थी रेशमी वस्त्र का रेशमी रस्सी लगभग एकदम टूट रहा, तो उसने सोचा कि इसी रस्सी से इसको मैं बांध दू, तब तक दूसरा दही मत लूंगी, इसके लिए माखन निकालूंगी और इसके बाद मना लूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उस समय रो रहा है, बांध दिया। हाँ तो बांधने चले तो सबसे पहले उखल में एक बार लपेट ली, बांध ली दूसरे अब पहला छोर, और दूसरा छोर अपने बच्चे को पकड़ करके खड़े थे, भाग नहीं सकते थे, मां को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, खड़ा रहो, और कृष्ण रो रहे थे घिघिया रहे थे, तो रस्सी का दूसरा छोर ला करके बांधना चाहिए, तो आते हैं तो मुट्ठी भर कमर में दो अंगुल कम हो गई रस्सी, मां को बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी लाई, और अनेक रस्सियां जोड़ती थी, गांठ लगाती थी और कमर में बांधने को आती थी तो दो अंगुल कम हो जाता,
तो मैं रस्सी बांधते बांधते जोड़ते जोड़ते और बच्चा बंध नहीं रहा था, इसलिए बड़ा मानसिक चिंता टेंशन हो रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी हो रही थी, वो पसीना से लथपथ हो गई। भागते समय ही कुछ गोपियां देखी थी कि अरे लाला को सजा मिलेगी, और इसके बाद जब रस्सी में बांधने लगी तो आया करके देखने लगी, तो गोपियां कहती थी रानी जी छोड़ दीजिए, क्यों बांध रही है, क्यों बांध रही है, क्यों बांध रही है। तो यशोदा जी कहती थी तुम लोगों ने इसको नटखट बनाया है, तुम लोगों ने नटखट बनाया है, आकर के हमारे पास उल्हाना देती है, और जब मैं अपने बेटे को ठीक कर रही हूँ तो कहती है छोड़ दो, जाओ अपने घर की रस्सी लाओ, लाओ जल्दी। तो वो तो दासी थी बेचारी, आज्ञा पाते हुए रस्सी ला ला करके देती थी, और वो डरती भी थी कि कुछ देख लेंगे कि रस्सी लेकर आ रहे तो हमारे घर कभी नहीं आएंगे। लेकिन रानी आज्ञा दे रही थी तो छिप करके कृष्ण देखने न पाए और रस्सी ला करके देती, और क्या करे, कृष्ण के सुधार के लिए बांधा जा रहा था, इसलिए गोपियां भी सहयोग करे। कोई कोई गोपी कहती थी रानी जी आपके लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, देखिए रस्सी घट रही है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। माँ ने कहा नहीं नहीं, चाहे पूरे गांव की रस्सी लगानी पड़े और बांधते बांधते भले शाम हो जाएगी लेकिन बांध करके ही रहूंगी। वास्तविक बात है कि भगवान की शक्तियों में होड़ हो गया, वो तैयार हो गए कि भगवान को हम नहीं बांधने देंगे, नहीं बांधने देंगे, शक्तियां प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भगवान के हृदय में जो कृपा शक्ति प्रकट हुई, माँ की दशा देखी, वो पसीने से लथपथ हो गई थी, बाल बिखर गया था, थक गई थी, तो अपनी माँ का परिश्रम देख करके भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और कृपा करके वो बंध गए। इस तरह से बंध गए, बंध गए। इसके बाद माँ ने कुछ बच्चों से कहा यहाँ खड़े रहो देखते रहो, और मैं जाकर के घर का काम करती थी। माँ घर का काम करने लगी, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, बच्चे को बांध करके थोड़ा रखना, डर जाएगा, इसे नटखटपना नहीं करेगा, शैतानी नहीं करेगा, इसके लिए बांधी। तब तो ब्रज में हल्ला हो गया कि माँ ने कृष्ण को बांधा है, कृष्ण को बांधा है, कृष्ण को बांधा है, सब सखा लोग जुटने लगे, लोग आया करके कहने लगे क्यों बांधा क्यों बांधा। माँ के पास कोई नहीं जा रहा, किसी की हिम्मत नहीं, क्यों बांधा क्यों बांधा, कौन बांधा कौन बांधा। दूसरे लोग बताते थे कि वो उसकी माँ ने बांधा है, तब सब शांत हो जाते थे, आते थे किसी के पास। इसमें किसी ने जाकर के दाऊद से कहा बलराम बलराम तुम्हारे छोटे भाई को बांधा गया है पशु की तरह, अब तो बलराम जी में ईश्वर का आवेश हो गया, भगवान है ही, कौन बांधा है कौन बांधा है, मैं पूरे ब्रज को जमा करके राख कर दूंगा। बोलते आते थे जानते मैं कौन हूँ, मैं संघर्ष हूँ, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, कौन बांधा है कौन बांधा है। आ रहे थे भगवत्ता के आवेश में, लेकिन यहाँ आने पर उनको पता चला कि माँ ने बांधा तो माँ ने बांधा है, तो फिर भी माँ के पास जाकर कहने लगे पास नहीं बंधन लगा तुमने बांधा है, तुमने कृष्ण को बांधा है, जानते हो कौन है, जानती हो कौन है कृष्ण, तुमने किसको बांधा है, तुम समझती हो कि तुम्हारा केवल पुत्र है, यही है नारायण, यह भगवान है, यही सारी सृष्टि किया है, तुमने इसको जो बंधन लगाया है तुमने बहुत पाप किया है, इसकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, ये करते हैं, यही सब अवतार लिए हैं, यही बड़ा अवतार लिए, नृसिंह अवतार लिए, ये लिए ये लिए ये लिए, इस तरह से बलराम जी कह रहे थे तुम खोलो नहीं तो मैं ब्रज में आग लगा दूंगा, पृथ्वी पलट दूंगा, खोलती हो कि नहीं खोलती हो कि नहीं, कृष्ण यह है वह। तो माँ घर के काम को रोक करके पूछी अब तुम कौन हो, ये तो नारायण है, ये तो भगवान है, लाचार रो रहा है, नारायण की दशा नारायण, दूसरे के घर में चोरी करता है नारायण होता, अब तुम कौन हो। भगवान जी कहते मैं संकर्षण हूँ, मैं शेष नाग हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कृष्ण जब जब अवतार लिए तो मैं भी आया ही आया हूँ आया हूँ आया हूँ, कृष्ण ये अवतार है, मान लो अवतार में अवतार तो माँ छड़ी दिखा करके कहती है देखो सारा अवतार मेरे ही घर में हो रहा है, दूसरे के घर का ही अवतार ले लीजिए। अभी अगर ज्यादा बोले तो जैसे कृष्ण को बांधे हो इसी तरह से बांधते हैं। तो भगवान जी फंसे हैं, हम दूंगा ऐसे कहते माँ से कहते हैं मैं खोल दूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं माँ का खोलने दो, खोल दो सास है तो खोल दूंगा खोल दूंगा। तो जरा चलो खोलने के लिए तो श्री बलराम जी जब चलते हैं खोलने के लिए और माँ छड़ी में कराती है तो ये चले तो उनका नहीं खोलता नहीं खोलता। फिर जब माँ घर के काम धंधे में लग जाते हैं तो फिर बलराम जी आए किसी के पास कहते और बलराम जी की तरफ कृष्ण बिल्कुल दीन की तरह देख करके रोने लगे कि भैया अब इस विपत्त में तुम सहायता कर, अब तुम ही एकमात्र हो, हम क्या करें। लेकिन बलराम जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, तुमको मैं कई बार कहा कि चोरी मत करो, कई बार कहा, मैं क्या करूं, जो किए हो भोगो, हम क्या करें। अगर दूसरा कोई बांधा होता तो मैं उसको दिखा दिया होता, लेकिन माँ बांधती मैं क्या करूं, तुमको कई बार कहा लेकिन सब चोरी मत करो, बर्तन मत खोलो, लेकिन तुम मानते नहीं, अब हम क्या करें। तो बलराम जी भी उसी उन्हीं के समान रोने लगे, साथ में खड़ा होकर दोनों ईश्वर रो रहे हैं दोनों भगवान रो रहे हैं। सुरदास जी ने पद लिखा है कि कृष्ण बलराम दोनों रो रहे हैं तो ये उन दोनों की रोती हुई छवि सदा मेरे हृदय में अंकित रहे। शुभ सागर में पद है ऐसा, यही छवि हमारे हृदय में अंकित। भगवान जी भी लाचार हो गए, खोल नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जिन बांधो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, स्वयं छिन्न ब्रह्म जसमत है कि बांधो सकत में छोरी। जिन प्रभु ने देवता नाग दैत मनु सबको कर्म की डोरी में बांध करके रखा है, उन्हीं को मां जसोदा ने ब्लाक बांध दिया और उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसको तोड़ सके। बलराम जी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको खोल सके, वो नंद बाबा आकर के खोलेंगे, सब कोई नहीं खोल सका। और भगवान का साहस नहीं था कि वो खोल लेंगे, उनको तो डर था कि खोलूंगा तो इस पर पिटाई खूब होगी और देर बंधन लग जाएगा, इसलिए हो तो खोलने का नाम नहीं लेते थे। यह है प्रीति का बंधन, स्नेह का बंधन, इसीलिए उखल में बंधे हुए भगवान की दामोदर की बारम्बार प्रार्थना की जाती है। सदगुरु जी मानते हैं कि जिस प्रकार आपने कुबेर के पुत्रों को भक्ति दिया बद्ध मूर्ति से ही है, उसी तरह आपका ये बंधा हुआ स्वरूप मेरे हृदय में सदा उदित रहे। मुझे न मोक्ष चाहिए, न राज्य चाहिए, न कुछ भी चाहिए, हे बाल गोपाल आपकी छवि सदा मेरे हृदय में अंकित रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।